ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्ते भवति नैष्ठिके ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहं श्री गुरौ श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास्तादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आज से बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। ऐसी चर्चाएं संभव होती हैं केवल वैष्णवों की कृपा से। तो चर्चा प्रारंभ करने से पहले श्रील प्रभुपाद और अन्य सभी वैष्णवों को सादर प्रणाम करते हैं ताकि उनकी कृपा से इस चर्चा को कर सकें। आज से एक श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं, भागवत सार। भागवत सार अर्थात श्रीमद् भागवत सार रूप में, संक्षेप में प्रयास करेंगे भागवत के हर स्कंद के हर अध्याय को सार रूप में कहने का। वैसे तो भागवत कहना बहुत कठिन है, सार जानना कठिन है, उसके लिए सारग्राही होना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि किस प्रकार जो आचार्यों की टीकाएं हैं, श्रील प्रभुपाद जी के अनुवाद और उनके तात्पर्य हैं, उनके आधार पर श्रीमद् भागवत को कहने का। तो इसीलिए ये सार है, हर एक अध्याय पर चर्चा होगी, कैसे वो अध्याय बटा हुआ है, उस अध्याय के क्या प्रमुख विषय हैं, उस अध्याय से हम क्या सीख सकते हैं और उस अध्याय का दूसरे अध्याय से क्या संबंध है, कैसे एक अध्याय दूसरे से जुड़ा है, इन विषयों पर चर्चा होगी। तो हर अध्याय पर यही चर्चा हम लोग करेंगे। पहला स्कंद जिसमें 19 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत के, तो उन 19 अध्यायों का भी विभाजन कैसे हुआ है, क्या क्या विषय हैं उन 19 अध्यायों के, उनको चर्चा इसमें करेंगे। फिर दूसरा स्कंद, फिर तीसरा स्कंद, जहाँ तक श्री कृष्ण शक्ति प्रदान करेंगे हम इसको कहने का प्रयास करेंगे। तो श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद प्रारंभ करने से पहले, पहला अध्याय प्रारंभ करने से पहले आज श्रीमद् भागवत के महात्म्य को कहेंगे। क्या महात्म्य है जो अलग अलग शास्त्रों में पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत और अन्य आचार्यों ने दिया है, तो इस सार को या इस महात्म्य को कहकर फिर श्रीमद् भागवत पर चर्चा प्रारंभ करेंगे, ताकि हम लोग जान सकें कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, जो सुन रहे हैं वो क्या है। तो आइए, कृष्ण लीला स्तव जिसकी रचना श्रीपद सनातन गोस्वामी ने की है, उसमें उन्होंने भागवत का गुणगान किया है, उसमें से कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। यहाँ बोर्ड पर 2 श्लोक हैं, तो आप इसको दोहराइए, इनको गाएंगे। इन श्लोक के बहुत सुंदर श्लोक हैं, तो इनको गाएंगे, तो आप सब कृपया दोहराइएगा। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदेक सत्फल सर्वसिद्धांतरत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा। सर्ववेदेक सत्फल सर्वसिद्धांत सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। शास्त्राधिपीयूष सर्ववेदेक सत्फल सर्वसिद्धांतरत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा। भागवतः प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता। सर्वशास्त्राधिपीयूष सर्ववेदैक सत्फल सर्वसिद्धांतरत्नाद्य सर्वलोकैक दृक्प्रदा। भागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कली भ्रांतो दिदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता से कोई एक इसको कहें सुंदर गुणगान है श्रीमद् भागवत का सनातन गोस्वामी इसको दे रहे हैं। वो कहते हैं कि सर्व शास्त्रार्थि पीयूष, पीयूष अर्थात अमृत, अब्धि अर्थात समुद्र। सर्व शास्त्रार्थि पीयूष, अगर सारे शास्त्रों को समुद्र माना जाए, सारे शास्त्रों का ये जो समुद्र है सर्वशास्त्राधि, और उसको अगर मंथन किया जाए जैसे समुद्र मंथन हुआ था, और समुद्र मंथन के समय बहुत सी चीजें निकली थी, लेकिन समुद्र मंथन का प्रमुख उद्देश्य था अमृत। तो इसी प्रकार अगर सारे शास्त्र ये जो समुद्र के समान हैं, अगर इनका मंथन किया जाए तो बहुत सी चीजें निकल सकती हैं, लेकिन प्रमुख चीज है पीयूष, पीयूष अर्थात अमृत। और ये अमृत क्या है? श्रीमद् भागवतम। सर्व शास्त्राधि पीयूष सर्व वेदेक सत्फल, और जितने भी अगर वेद हैं इनको अगर वृक्ष का रूप लिया जाए, शास्त्रों को अगर समुद्र माना जाए तो श्रीमद् भागवत अमृत है। अगर सारे वेदों को वृक्ष के समान माना जाए, सर्व वेदेक सत्फला, तो एक ही वेद एक ही सत्फल है। सत्फल अर्थात बहुत सारे फल हैं, लेकिन सत्फल, सत्फल मतलब जो हमें सत की ओर ले जाए। इस जगत में हम लोग असत में हैं, इसीलिए एक प्रार्थना की जाती है, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतंगमय, कि मुझे असत से सत की ओर ले जाइए, तमस अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाइए, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर मा अमृतंगमय, और मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाइए। या दूसरे शब्दों में भौतिकता से, जड़ पदार्थ से आध्यात्मिकता की ओर ले जाइए। तो श्रीमद् भागवतम ये सारे वेदों का सत फल है, सत फल, असत नहीं है। सर्व सिद्धांत रत्नाढ्य, जितने भी सिद्धांत हैं शास्त्रों में, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, वैसे सारे शास्त्रों के आधार हैं सिद्धांत। सिद्धांतों पर ही धर्म आधारित होता है। धर्म किसे कहते हैं? धर्म उसे कहते हैं जो कुछ सिद्धांतों पर चलता है। वो सिद्धांत कौन देते हैं? भगवान देते हैं। और भगवान वो सिद्धांत कैसे देते हैं? शास्त्रों के द्वारा। तो सर्व सिद्धांत का, जितने भी सिद्धांत हैं उनमें रत्न के समान है श्रीमद् भागवतम। अर्थात सारे सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांत प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। बाकी अन्य ग्रंथ भी सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी और ग्रंथ में सिद्धांत नहीं, लेकिन सिद्धांतों को, सिद्धांतों में से सर्वश्रेष्ठ सिद्धांत, सिद्धांत रत्न ये श्रीमद् भागवत प्रकट करता है। सर्वलोकैक दृक् प्रदा, और जितने भी लोक हैं, लोक अर्थात जितने भी यहाँ पर जीव हैं या स्थान हैं, दृक् प्रदा, दृक् प्रदा मतलब उनको प्रदान करता है क्या, दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि अर्थात श्री कृष्ण को देखने की दृष्टि। दिव्य दृष्टि का एक ही अर्थ हो सकता है, वो दृष्टि जिससे श्री कृष्ण को देखा जा सके, उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। दिव्य दृष्टि का अर्थ नहीं है कि कोई व्यक्ति भविष्य देख ले, अपनी दिव्य दृष्टि से उसने भविष्य देख लिया। दिव्य दृष्टि का अर्थ है कि वो दृष्टि, वो हमारी चेतना जिससे हम कृष्ण को समझ सकें, तो वो चेतना, वो दृष्टि श्रीमद् भागवत प्रदान करता है। और इसीलिए सर्व भागवत प्राण, जितने भी भागवत हैं, भागवत अर्थात भक्त भागवत, चैतन्य चरितमृत में दो प्रकार के भागवतों का वर्णन बड़ा स्पष्ट किया गया है, एक ग्रंथ भागवत और एक भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को भागवतम कहते हैं, श्रीमद् भागवतम, ये ग्रंथ भागवत के लिए आता है, तो अंतर करने के लिए। और भक्त भागवत जो उस श्रीमद् भागवतम के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारता है उसे भागवत कहते हैं। ग्रंथ को भागवतम कहते हैं, और जो उस भागवतम के सिद्धांत को अपने जीवन में उतारता है श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उसे भागवत कहते हैं। तो दो तरह के भागवत, इसीलिए सर्व भागवत प्राण, जितने भी ऐसे भागवत हैं जिन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए समर्पित किया है, जो भागवतम के सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार रहे हैं, उनके लिए भागवतम प्राण है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवतम का मूल उद्देश्य है श्री कृष्ण का गुणगान। सारे भागवत के जितने भी प्रसंग हैं, जितने भी स्कंद हैं, इन सब का उद्देश्य है श्री कृष्ण की प्रसन्नता और श्री कृष्ण का गुणगान, बस। इसीलिए श्रीमद् भागवत के 10 विषयों में से प्रमुख विषय है आश्रय, अंतिम विषय। वैसे तो बहुत से विषय हैं, सर्ग है, विसर्ग है, स्थानम है, पोषणम है, उद्धया, ईशनुकथा, मनवंतरा, निरोध, मुक्ति, ये 9 जो विषय हैं, ये सब केवल 10वें विषय की ओर हमें ले जाने के लिए हैं, और वो 10वां विषय है श्री कृष्ण, परम आश्रय। इसलिए भागवत का उद्देश्य है श्री कृष्ण का गुणगान, श्री कृष्ण की ओर लेकर जाना, दृक् प्रदा, ऐसा दिव्य दृष्टि हमें प्रदान करना जिसके द्वारा हम कृष्ण का दर्शन कर सकें, अन्यथा संभव नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय में अर्जुन को जब भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान की, अर्जुन उनके रूप को देख सका, विश्व रूप को, और जब भगवान अपने विराट रूप को चतुर्भुज रूप और फिर द्विभुज रूप में कर लेते हैं, तो भगवान कहते हैं कि ये देवताओं के लिए भी देख पाना संभव नहीं है, देवता भी इस रूप को देखने के लिए नित्य कांक्षिणः, इस रूप को देखने के लिए देवता भी प्रयास करते रहते हैं। तो इसलिए वो रूप कैसे जाना जा सकता है, भक्त्यात्मनन्यया शक्या, मुझे अगर देखना है, मुझे अगर जानना है, श्री कृष्ण कहते हैं केवल भक्ति, और वो भक्ति प्रदान करते हैं श्रीमद् भागवतम। इसीलिए श्रीमद् भागवतम वो दिव्य दृष्टि प्रदान करती है जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण को देख सकते हैं, और इसीलिए सारे भागवतों का अर्थात उन भक्तों का जिन्होंने जीवन समर्पित किया है कृष्ण को, प्राण है श्रीमद् भागवतम, उनको बहुत प्रिय है। यद वैष्णवानां प्रियम, वैष्णवों को बहुत प्रिय है श्रीमद् भागवत। क्यों? क्योंकि ये श्री कृष्ण के विषय में है। कौन है श्री कृष्ण, क्या लीलाएं की इत्यादि। तो इसीलिए वो कहते हैं सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो कली ध्वांतो दिदादित्य। और ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये कलियुग का जो अंधकार है, ध्वांत, कली ध्वांत, कलियुग का जितना भी अंधकार है उसको समाप्त करने के लिए कली ध्वांतो उदय हुआ है आदित्य। आदित्य यानी सूर्य। तो श्रीमद् भागवतम एक ऐसा सूर्य है जो इस कलियुग के अंधकार को दूर करने के लिए प्रकट हुआ है। कली ध्वांतो दिदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तित। और ये कोई और नहीं, स्वयं श्री कृष्ण हैं परिवर्तित, फिर वापस आ गए हैं। चले गए थे 5000 साल पहले लीला समाप्त करके, श्री कृष्ण परिवर्तित फिर से वापस आ गए हैं श्रीमद् भागवतम के रूप में। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि इस कलयुग में श्री कृष्ण चार रूपों में प्रकट होते हैं, श्रीमद् भागवतम, तुलसी, गंगा और वैष्णव। इन चारों के रूप में श्री कृष्ण अपने आप को प्रकट करते हैं, अर्थात इन चारों से हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत से, तुलसी की पूजा से, गंगा के स्नान से और वैष्णवों की सेवा से हम श्री कृष्ण की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इसीलिए कली ध्वांतो दिदादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। आगे भी बहुत सुंदर वो श्लोक कहते हैं, एक दो श्लोक और पढ़ेंगे। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते, जो व्यक्ति इसका पठन करता है, पाठाय जब पढ़ता है इसको तो क्या होता है, परमानंद, परम आनंद की प्राप्ति करता है। परम आनंद अर्थात वो आनंद जिसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर किसी और आनंद की कामना नहीं करता, आकांक्षा नहीं करता, उसको परम आनंद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, अगर इस जगत में कोई व्यक्ति बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है, मान लीजिए कि कोई एक देश का प्रधानमंत्री हो गया है, अब वो प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री बनकर वो कामना नहीं करता कि मैं किसी छोटे से शहर का मेयर बन जाऊं, कोई कामना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रधानमंत्री का पद मिला, ऐसे कई मेयर उसके अधीन हैं, हजारों मेयर होंगे भारत में, हजारों शहर हैं लेकिन सब प्रधानमंत्री के अधीन है। तो अगर कोई प्रधानमंत्री बन जाता है तो वो कामना नहीं करता कि मैं छोटे से शहर का मेयर बन जाऊं, तो परम पद मिल गया उसको। परम पद मतलब एक भौतिक जगत की दृष्टि से या एक राज्य की दृष्टि से। इसी तरह परमानंद क्या है, परमानंद वो आनंद है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति फिर नीचे के आनंद की ओर ध्यान नहीं देता, फिर वो कभी किसी और आनंद की आकांक्षा नहीं करता। जैसे श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि एक बार ऊंचा आनंद का रस ले लेने से फिर व्यक्ति नीचे आनंद की ओर नहीं आता। तो परम आनंद क्या है, परम आनंद का अर्थ है वो आनंद जिसको प्राप्त करके फिर किसी और आनंद की आकांक्षा जीव नहीं करता। जो सच्चा आनंद है, कृष्ण भक्ति का आनंद, मूल आनंद, जीव का स्वरूप, वो परमानंद है। तो इसीलिए परमानंद पाठाय, पढ़ने से केवल उस आनंद की प्राप्ति होती है। क्या ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा है, अतिशयोक्ति है, ऐसा हो नहीं सकता, क्या केवल भागवत पढ़ने से परम आनंद मिलेगा? हाँ मिलेगा। क्यों? क्योंकि भागवत का एक एक अक्षर प्रेम वर्ष अक्षरायते, प्रेम की वर्षा करता है। प्रेम वर्ष, वर्ष यानी वर्षा, प्रेम की वर्षा अक्षरायते, एक एक अक्षर प्रेम की वर्षा करता है। अर्थात कैसे करता है प्रेम की वर्षा? भागवत के शब्दों को अगर ये स्कंद पुराण में भागवत महात्म्य में लिखा है कि अगर रोज कोई केवल एक श्लोक भागवतम का पढ़ लेता है, केवल एक श्लोक रोज, आधा श्लोक कोई अगर पढ़ लेता है तो निश्चित मुक्ति को प्राप्त करेगा, हृदय शुद्ध हो जाता है। ये भागवत के शब्दों का महत्व या शक्ति है। तो इसीलिए वर्ष पर प्रेम वर्ष अक्षरायते, एक एक अक्षर उस प्रेम को प्रदान करता है जिसके लिए हम लोग सब लालायित हैं लेकिन उसको जानते नहीं हैं। तो जब तक शुद्ध नहीं होंगे उस प्रेम तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए भागवत हमें शुद्ध करता है, हृदय शुद्ध करता है, जिससे हम उस स्तर तक पहुंच सकें। सर्वदा सर्व सेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुते। इसीलिए सर्वदा हमेशा सर्व सभी को भागवत की सेवा करनी चाहिए। सेवाय, जब हम भागवत की सेवा करेंगे, भागवत की सेवा कैसे होती है? भागवत पढ़कर, भागवत सुनकर, केवल भागवत देखकर। स्कंद पुराण में लिखा है कि अगर कोई केवल भागवतम की प्रदक्षिणा कर लेता है तो ये कई बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करने के समान है, केवल भागवतम की प्रदक्षिणा। तो ऐसे श्री कृष्णाय नमस्तुते। आगे वो कहते हैं, मदेक बंधु मत संगी मत गुरु मन महाधन मन निस्तारक मत भाग्य मदानंद नमोस्तुते। बहुत सुंदर बात कहते हैं, मद एक बंधु मत संगिन, मेरा एक ही बंधु है और वो है श्रीमद् भागवतम। बंधु का अर्थ क्या होता है? बंधु का कार्य क्या होता है? बंधु किसे कहते हैं? जो प्रेम प्रदान करे। बंधु मेरा बहुत आत्मीय, बंधु शब्द केवल मित्र के लिए नहीं आता है, बहुत आत्मीय मित्र को बंधु कहा जाता है, ये मेरा बंधु है। तो बंधु क्या कार्य करता है? वो आनंद प्रदान करता है, प्रेम प्रदान करता है। मरे एक बंधु मत संगीन, मेरा एक ही संगी है और वो है श्रीमद् भागवत। मत गुरु मन महाधना, मेरा गुरु भी श्रीमद् भागवत है। क्यों? गुरु का कार्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना, मोह से दूर लाना, ये गुरु का सच्चा कार्य है। ज्ञान प्रदान करना, मोह से परे लाना, श्री कृष्ण की ओर ले जाना। अगर गुरु ये कार्य नहीं कर रहा है तो वो गुरु नहीं है। बड़ा सरल है, ज्ञान प्रदान करे, सही ज्ञान, मोह से दूर करे, फिर उसके लिए उसको कुछ भी क्यों ना करना पड़े मोह से दूर करने के लिए, लेकिन श्री कृष्ण की ओर ले जाए, तो ये सच्चा गुरु है। और श्रीमद् भागवतम यही करती है। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो मोह से दूर होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और कहां जाते हैं? श्री कृष्ण की ओर। इसीलिए मत गुरु मन महाधना, सबसे बड़ा धन भी यही है, महाधन। क्यों सबसे बड़ा धन है? हमें तो सोना चाहिए, चांदी चाहिए, हीरे चाहिए, रुपया चाहिए, तो फिर ये धन लेकर क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत ये क्यों महाधन है? क्योंकि एक ऐसा धन है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद फिर इस भौतिक जगत का कोई धन उपयोगी नहीं रह जाता। ये एक ऐसा धन, इसके सामने सारे धन फीके हैं, क्योंकि ये सीधा आध्यात्मिक जगत से आया है। ये वो धन है जो हमें इस भौतिक जगत के पार ले जा सकता है। अगर ऐसी कमाई हम करें, जीवन में हम जो कमाई करते हैं वो क्या करती है? इस जगत में बांधती है। धन कमाइए, सोना कमाइए, चांदी रखिए, हीरे जवाहरात रखिए, क्या होगा? भय उत्पन्न होगा, आसक्ति उत्पन्न होगी। इस जगत का धन भय और आसक्ति उत्पन्न करता है, भोग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। ये इस जगत के धन के लक्षण हैं। जिसके पास भी धन है उसके पास ये सब है। ये एक जब हम धन लेते हैं तो उसके साथ ये आ ही जाता है। तो जहां धन है इस भौतिक जगत का या फिर कोई और ऐश्वर्य, उसमें भय होगा, आसक्ति होगी और भोग करने की प्रवृत्ति का बढ़ावा होगा। ये इस जगत के धन के लक्षण है। ये स्वाभाविक है, सही है कि नहीं? जहां धन है वहां ये सब है। व्यक्ति भयभीत रहता है कहीं चला नहीं जाए, टैक्स नहीं देना है, चोर नहीं ले जाए, डाकू नहीं ले जाए, हमेशा भयभीत रहता है, आसक्त रहता है, छुपा छुपा के रखता है, बचा बचा के रखता है। और क्या सोचता है, अगर धन है तो मैं बहुत आनंद ले सकता हूं, तो आनंद की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है धन। लेकिन ये महाधन है, क्यों महाधन है? ये भय से मुक्त करता है, आसक्तियों को निकाल देता है, विरक्ति उत्पन्न कराता है। भय से मुक्त, विरक्ति हृदय में आती है और कृष्ण की सेवा के लिए प्रेरित करता है, सारी भोग प्रवृत्तियों से परे ले जाता है और उससे भी आगे इस भौतिक जगत के परे जाने के लिए ये एक ही कमाई है। अन्य किसी कमाई से आप इस भौतिक जगत के बाहर नहीं जा सकते। आप धन कमा लीजिए, मान सम्मान कमा लीजिए, पद कमा लीजिए, बहुत अच्छा नाम कमा लीजिए, सब इस जगत में धरा रह जाएगा। कोई चीज आपको जगत के बाहर नहीं ले जा सकती, केवल एक श्रीमद् भागवतम। इसीलिए सनातन गोस्वामी कहते हैं, मद गुरु मन महाधन, ये मेरा महाधन है, अगर इसकी कमाई मैं करूं तो मैं आध्यात्मिक जगत जा सकता हूं, मैं इन भोग प्रवृत्ति से परे, ये भय से परे, ये आसक्तियों से परे हो सकता हूं। इसीलिए मन महाधन, मन निस्तार का मत भाग्य, और निस्तार का मेरा उद्धार करने वाला केवल श्रीमद् भागवत है, मत भाग्य, और यही मेरा भाग्य है। हम लोगों का भाग्य क्या होता है इस जगत में, बद्ध जीव का भाग्य क्या है, कोई एक शरीर प्राप्त कर लेना, कुछ थोड़ा धन प्राप्त कर लेना, भाग्य से मुझे बहुत कुछ मिला। लेकिन मत भाग्य श्रीमद् भागवतम ऐसे भाग्य का उदय करता है जहां श्री कृष्ण आपके साथ लीला करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे एक प्रश्न किया सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने, नंद किम अकरोत् ब्रह्मण श्रेय एवं महोदयम्, यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि। वो पूछते हैं कि नंद किम अकरोत् ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, ये नंद महाराज ने क्या किया था, क्यों श्रेय एवं महोदयम्, उनके तो भाग्य का इतना उदय हो गया, इतना बड़ा भाग्य कि कृष्ण उनके उनकी खड़ाओं उनकी चप्पल उठाकर लेकर आते हैं, ऐसा क्या कर लिया उन्होंने? ऐसा होता था, नंद महाराज कहते थे कृष्ण को, जाओ मेरी चप्पल लेकर, तो कृष्ण को खड़ाऊं लेकर अपने सर पर, छोटे से थे, चल नहीं पाते थे, उठा नहीं पाते थे, तो सर पर रखकर ले आते थे। तो परीक्षित महाराज पूछने लगे, क्या किया नंद महाराज ने, नंद किम अक्रोध ब्राह्मण श्रेय एवं महोदयम, और ठीक है नंद महाराज का तो बड़ा भाग्य है, यशोदा च महाभागा, यशोदा का तो उनसे भी बड़ा भाग्य है, क्योंकि नंद महाराज तो सुबह देख लेते थे थोड़ा बहुत कृष्ण को, फिर चले जाते थे अपने काम में, उनको बहुत सारी व्यवस्था करनी होती थी। लेकिन यशोदा ये तो हर समय कृष्ण के साथ रहती थी। यशोदा च महाभागा पपो यस्य स्तनम हरि, वो हरि, वो भगवान, अहम सर्वस्य प्रभव, उन्होंने यशोदा के स्तनपान किया। तो इतना बड़ा भाग्य क्या किया, तो ये भाग्य भागवत प्रदान करती है, तो इसीलिए उसको वो कहते हैं। आगे एक आखिरी श्लोक लेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है, वो कहते हैं, असाधु साधु तदाई अति नीचो चत कर हान मुंच कदाचिन माम पे नारद कंठ यो सुरा। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए श्रीमद् भागवत से। असाधु साधु तदाइन, ऐसे लोग जो असाधु हैं, भक्त नहीं हैं, पापी हैं, असाधु साधु तदाइन, उनको भक्ति प्रदान करती है श्रीमद् भागवतम, साधुत्व प्रदान करती है। असाधु साधु तदाइन अति नीचो च रह कर, और जितना भी अति नीच, अति नीचो चरा करा, जो बहुत नीच व्यक्ति है। देखिए सनातन गोस्वामी ने अति नीच शब्द इस्तेमाल किया, नीच भी नहीं, अति नीच, अति नीचो चरा, उसको ऊपर उठा देती है, जो बहुत नीचे गिरा हुआ है उसका भी उद्धार करती है। तो ये श्रीमद् भागवत है। असाधु साधु तदाइन अति नीचो चरा, उसको भी उच्च करा, उच्च मतलब ऊंचा कर देती है। अति नीच, नीच यानी नीचा, उच्च करा यानी ऊंचा कर देती है। हान मुंच कदाचिन माम, अब ये प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी कि कृपया मुझे कभी त्यागिएगा नहीं। हान मुंच, मुंच मतलब छोड़ देना, तो हान मुंच कदाचिन माम, मुझे कभी मत छोड़िएगा, ये प्रार्थना है। प्रेमा प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा, मेरे कंठ में कंठयो स्फुरा, आप सदैव प्रेम से स्थापित रहिए। क्या अर्थ है? मैं सदैव आपको उच्चारण कर सकूं। तो सनातन गोस्वामी कह रहे हैं कि आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सदैव आपका गुणगान, आपका उच्चारण, आपके श्लोकों का उच्चारण, आपके ज्ञान को लोगों को बांट सकूं। इसीलिए आप सदैव मेरे कंठ में, कंठ सुरा, आप मेरे सदैव कंठ में विराजमान रहिए, प्रेम नाहत प्रेम से। तो ये सनातन गोस्वामी का गुणगान है श्रीमद् भागवतम के प्रति। वैसे श्रीमद् भागवतम का गुणगान कई स्थानों पर किया गया है, पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, श्रीमद् भागवतम में, ऐसे कई स्थानों पर श्रीमद् भागवतम का गुणगान है। पद्म पुराण में तो इतना स्पष्ट कहा गया है कि जहां श्रीमद् भागवतम है उसके आगे किसी और ग्रंथ की कोई आवश्यकता नहीं, ये पद्म पुराण कहता है। साधारणतः एक पुराण दूसरे पुराण का गुणगान नहीं करेगा, पद्म पुराण में कहा गया कि नहीं, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है, पद्म पुराण में नहीं, पद्म पुराण ऐसा नहीं कहा गया, श्रीमद् भागवत ऐसा पुराण है, इतने तेज सूर्य के समान है कि जहां वो हो तो किसी और पुराण की आवश्यकता नहीं है। तो पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर कथा दी गई है। एक बार बद्रिकाश्रम में सनकादि ऋषि, सनकादि मतलब ब्रह्मा जी के चार पुत्र, आप सब जानते हैं ब्रह्मा जी सृष्टि करना चाहते थे तो उन्होंने चार पुत्रों को उत्पन्न किया और उनसे कहा कि जाओ सृष्टि की रचना करो, विवाह करो, बढ़ाओ, प्रजनन क्रिया करो। तो चारों ने मना कर दिया, चारों ने ब्रह्मा जी को कहा भूल गए लगता है जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य ये सब करना नहीं है, और विवाह तो छोड़ो, संतान उत्पत्ति तो छोड़ो, हम तो बड़े ही नहीं होंगे क्योंकि बड़े होने से सारा क्या कहते हैं दिमाग खराब हो जाता है ना, छोटा रहता बालक अच्छा है, खुश है, खेलता रहता है, कहां उसको कोई चिंता नहीं रही, सारी चिंताएं, सारा मल, सारा दूषण बड़े होने पर आ जाता है। छोटे बालक के हृदय में कोई दूषण नहीं, छोटे बच्चे देख खेलते रहे, बस उनको कोई मार भी दे तो भी उनको ऐसे ये नहीं होता, जैसे हमने कई बार देखा है कि माँ होती है वो बच्चे को जोर से थप्पड़ मारती है, इतनी जोर से कि आवाज भी आती है बहुत जोर तक, बच्चा रोता है थोड़े समय लेकिन जाके माँ से ही लिपट जाता है, उसके मन में ये नहीं आता तुमने मुझे थप्पड़ मारा जीवन भर तुम्हारी शक्ल नहीं देखूंगा ऐसे कुछ नहीं आता। हम लोग हो जाते हैं बड़े तो आता है, कोई हमें कुछ बोल भी दे बुरा लग जाए तो हम जीवन भर उसकी शक्ल नहीं देखने का प्रण ले लेते हैं, लेकिन बच्चा कुछ नहीं है, वो लड़ते हैं आपस में और जब लड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद अब जीवन भर कभी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, 15 मिनट बस फिर से वापस खेलने लगते हैं। 10 मिनट 15 मिनट इसने मुझे मारा, उसने मुझे मारा, और फिर सब ठीक हो गया। तो इसीलिए चार कुमारों ने कहा हम तो बड़े ही नहीं होंगे, बाकी तो बातें आप छोड़ दीजिए, हम ऐसे ही, तो एकदम छोटे बालक हैं, ऐसे घूमते हैं नग्न, छोटा बच्चा नग्न घूमता है लोगों को अच्छा लगता, कोई तो लोग ऐसे ही घूमते हैं, कोई चिंता नहीं। चार कुमार इसीलिए जब वो वैकुंठ चले गए थे द्वारपालों ने रोक दिया, हे बच्चे कहाँ जा रहे हैं अंदर भगवान से मिलने, तो समझ नहीं पाए कि कितने बड़े ज्ञानी हैं। तो ये चारों कुमार ये बद्रिकाश्रम में एक समय थे और उन्होंने देखा नारद मुनि वहां पर आए, और नारद मुनि बड़े दुखी हैं, उनके चेहरे पर से दुख प्रकट हो रहा है। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जैसे भक्त अगर दुखी रहेंगे तो क्या होगा। तो उन्होंने नारद मुनि से पूछा कि आपके चेहरे पर ये दुख कैसा, क्या हुआ है बताइए। तो नारद मुनि ने कहा कि मैं ये कलयुग प्रारंभ हो गया है, और इस कलयुग में मैं बहुत घूम रहा हूँ पृथ्वी पर, और मैंने देखा है कि सब तरफ दुख ही दुख है, कोई सुख नहीं, कोई व्यक्ति सुखी नहीं, केवल दुख। और वो कलयुग का बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, वो कहते हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया न विद्यते उदरम भरिणो जीव वर कह कूटभाषिणः। क्या स्थिति है कलयुग की, वो कहते हैं सत्यम सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति तपः शौचम, सत्य नास्ति, कोई सत्य नहीं बोल रहा, तपः शौचम तपस्या सब भूल गए हैं, शौचम शुद्धता है ही नहीं कहीं पर, और दया न विद्यते ना कोई दया करता है। ये सारे जो गुण हैं ये देखिए किसके गुण हैं, दया करना, शुद्ध रहना, तपस्या करना, सत्य बोलना, ये चार खंभे हैं धर्म के, और इनका नाश कैसे होता है, ये बहुत सुंदर श्लोक है, ये पद्म पुराण से श्लोक है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया न विद्यते, कहते चार चीजें कलयुग में समाप्त हो गई। और इसीलिए प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम लोग चार नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि यही चार चीजें सत्यम नास्ति तपः शौचम दया, ये चार चीजें पुनः स्थापित हो सके। तो सत्य इसका नाश हो जाता है अगर हम लोग कौन सा नियम तोड़ते हैं चार नियमों में से, हाँ जुआ खेलते हैं, द्युत क्रीड़ा जब करते हैं तो फिर सत्य का नाश हो जाता है। सत्यम नास्ति तपः, तपस्या का नाश कैसे होता है, पीने से, लोग शराब पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, आजकल पता नहीं क्या क्या करते हैं, केमिकल्स लेते हैं, तो ऐसे इससे क्या होता है तपस्या, क्योंकि तपस्या क्या है, कष्ट आए तो उसको सहन करना। इन व्यक्ति के कष्ट आए थोड़ा सा पी लेता हूं, कोई कष्ट नहीं, तपस्या करना ही नहीं चाहते, तो तपस्या का नाश हो गया। शौचम शुद्धता का नाश कैसे होता है, अवैध संग जब करते हैं तो शुद्धता चली जाती है। और दया, दया का नाश कैसे होता है, जब हम जीवों को काटते हैं। देखिए नारद मुनि ने क्या वर्णन किया, सत्यम नास्ति तपः शौचम दया न विद्यते, कलयुग में चारों नहीं है, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं इन चारों नियम का कड़ाई से पालन करेंगे तब हम धर्म के सिद्धांतों को स्थापित कर रहे हैं। उदरम भरिणो जीव, सारा कार्य किस लिए है, उदरम भरिणो, बस पेट भरने के लिए काम करते हैं जीव, सत्य की चिंता नहीं, मतलब कैसे भी कमाओ बस पेट भरना चाहिए, झूठ बोलो, गलत काम करो, दया नहीं करो, जो भी हो उदरम भरिणो जीव, बस मेरा पेट भरना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं उदरम भरिणो जीव वर कह कूट भाषिणम, और इतना बुरा बोलते हैं इस जगत में, कूट कूट भाषिणम, दुष्ट लोग हैं ऐसी भाषा बोलते हैं, तो कूट भाषिणम, मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रितः पाखंड निरतः संतो विरक्तः सत्परिग्रहः। कहते कलयुग के लक्षण क्या हैं, मंद सुमंद मतयो, व्यक्ति बुद्धिमान है ही नहीं, बड़ा डल बड़ा मंद व्यक्ति है, मंद सुमंद मतयो, मंद भाग्य और ऊपर से भाग्य भी नहीं है, दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और फिर वो आगे क्या कहते हैं, पाखंड निरतः संतो, इस कलयुग में जितने संत हैं सारे पाखंडी हैं, सारे पाखंडी हैं, पाखंडो निरतः संतो, अरे जितने भी संत है केवल संत का वेश डाल रखा है कलयुग में, हैं सारे पाखंडी। क्यों? कोई विरक्ति नहीं है, विरक्त सब परिग्रह, बाहर से केवल विरक्ति का दिखावा है लेकिन कोई भी विरक्त नहीं है। तो नारद मुनि कहने लगे, कलयुग का वर्णन करते हैं कि इस कलयुग में लोग केवल पैसे के लिए, बस पैसा पैसा कमाना पैसा कमाना, झगड़े हो रहे हैं हर जगह, झगड़े हैं, लोग छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते हैं, समाज राष्ट्रों में झगड़े हो रहे हैं, छोटी सी भूमि के लिए राष्ट्र झगड़ते हैं, या फिर पानी के लिए, तेल के लिए, पानी के लिए झगड़ा होता है। आप देखिए भारत में भी दो राज्य लड़ रहे हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये पानी हमारा है वो पानी हमारा है, झगड़ा चल बहुत समय से चल रहा है। पानी के लिए झगड़े होते हैं, जमीन के लिए झगड़े होते हैं, तो राष्ट्र झगड़ रहे हैं, समाज झगड़ रहे हैं आपस में, लोग झगड़ रहे हैं, परिवार के लोग झगड़ रहे हैं आपस में, घर में भी झगड़ा भाई भाई में, कोई सुखी नहीं है, ये कलयुग का लक्षण। तो नारद मुनि कहते हैं सब जगह केवल झगड़ा है, और वो इसलिए कि व्यक्ति ये बताना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, मैं महान हूं बस। और इतना ही नहीं, नारद मुनि कहते जितने आश्रम हैं ब्रह्मचारी आश्रम से प्रारंभ होकर वो सब भी दूषित हो गए। दूषित हो गए मतलब कोई अपने आश्रम का ठीक से पालन नहीं कर रहा। ब्रह्मचारी आश्रम का क्या नियम है, ब्रह्मचारियों को केवल अध्ययन करना चाहिए, भगवान की सेवा निम्न सेवाएं करनी चाहिए, और भोग प्रवृत्ति से स्त्रियों से दूर रहना चाहिए। नारद मुनि कहते ब्रह्मचारी आश्रम से प्रारंभ होकर सब दूषित हो गया, कोई इस भाव में नहीं। विशेष करके जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं उनमें तो ब्रह्मचारी बनते हैं तो वो सोचते हैं कि हमें तो सारी सुविधा चाहिए। ब्रह्मचारी मतलब भिक्षुक भिखारी, वॉलेंटियरली स्वतः हम भिखारी बनने की इच्छा करते हैं तब ब्रह्मचारी बनते हैं, लेकिन ब्रह्मचारी बनकर हम थोड़े महान हो जाते, व्यासासन मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। और गृहस्थ जीवन के क्या नियम है, तो नारद मुनि कहते कलयुग में ब्रह्मचारी पालन नहीं कर रहे, गृहस्थ जीवन के क्या नियम है, गृहस्थ जीवन का नियम है कि जितना वे लोग कमाएं उसका आधा भगवान की सेवा के लिए दे दें, 50% जो भी कमाए भगवान की सेवा के लिए दे दें, ताकि तीनों आश्रम चल सके, और बड़े नम्र भाव में सेवा करें। तो गृहस्थों के लिए चैरिटी, दान देना, सेवा करना, ये बहुत आवश्यक है। तो सब चला गया। आज बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपना 50% कमाई हर महीने आकर दे देता है, ये लीजिए मंदिर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो गृहस्थ जीवन का पालन नहीं हुआ। गृहस्थ भी एक आश्रम है, उसमें आश्रम की तरह रहना चाहिए, उसका भी उद्देश्य भगवान की प्राप्ति है, केवल भोग के लिए नहीं बना है, लेकिन आजकल उसको केवल भोग के लिए बना दिया। वानप्रस्थ जीवन कलयुग में है ही नहीं, वानप्रस्थ बहुत कम दिखने को मिलता है, कोई एक बार गृहस्थ बन जाए तो वो छोड़ना ही नहीं चाहता, वानप्रस्थ होना ही नहीं चाहता, सही है ना, बूढ़े हो जाते हैं लेकिन घर छूटता नहीं। हमें अभी बंबई में एक भक्त बता रहे थे कि बहुत कठिन है एक बार गृहस्थ आश्रम में आकर फिर उसको छोड़ना। वो अब कोई बिजनेस करते थे तो उन्होंने कहा कि मैंने निर्णय ले लिया कि मैं सारा बिजनेस बंद कर दूंगा आज से, अभी से। उस दिन से 2 साल लगा मुझे बिजनेस बंद करने को 2 साल छूट ही नहीं रहा था, जबकि मैंने पूरा निर्णय ले लिया कि बस कुछ नहीं करूंगा, अभी केवल भगवान की सेवा, छूटा नहीं। और वो कह रहे हैं अब वो करीब अभी उनको 15-18 साल हो गए 20 साल से छोड़े हुए, अपना बिजनेस बंद किए हुए, बोले अभी तक परिवार नहीं छूट रहा, सब उन्होंने छोड़ दिया, केवल बाहर प्रचार करते हैं लेकिन अभी भी घर से आसक्ति बनी हुई है। तो वानप्रस्थ है। और फिर संन्यास तो कहना क्या, कलयुग में इसीलिए मना किया क्योंकि कोई संन्यास का पालन ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं नारद मुनि, ब्रह्मचारी आश्रम से प्रारंभ होकर सारे आश्रम दूषित हो गए, और हम लोग देखते हैं क्या क्या हो रहा। तो ऐसे बहुत सारा उन्होंने वर्णन किया। और फिर कहने लगे ऐसे में पृथ्वी पर ये सब ढूंढते देखते देखते जा रहा था, अंत में मैं वृंदावन पहुंचा ये सोच के कि वहां तो श्री हरि का स्थान है। और वहां मैंने एक बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। मैंने देखा कि यमुना के किनारे एक युवती, 16 वर्ष की युवती है, बैठी हुई है, बड़ी दुखी है, रो रही है, और बहुत सारे स्त्रियां वहां पर हैं, वो रो रही हैं, और दो बूढ़े व्यक्ति वो पास में ही लेटे हुए हैं, गिरे हुए हैं भूमि पर, और उनको देख देख कर ये 16 वर्ष की महिला रो रही है। तो मैंने जाकर पूछा क्या हुआ, क्या बात है। तो उसने जब मुझे देखा तो कहा नारद मुनि आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कौन है? तो उसने बताया मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति देवी के नाम से जानी जाती हूँ। जन्म तो मेरा द्रविड़ देश में हुआ था, लेकिन पलकर बड़ी हुई कर्नाटक में, ऐसा लिखा गया पद्म पुराण में, पलकर बड़ी हुई कर्नाटक में। और फिर मैं अलग अलग जगह घूमी, लेकिन जब उत्तर भारत और विशेष करके जब गुजरात में आई तो मैं वहां बूढ़ी हो गई। भक्ति कहती गुजरात में आके मैं बूढ़ी हो गई, क्योंकि वहां कोई भक्ति नहीं है। भक्ति नहीं है मतलब वो कहने लगे कि भक्ति को बहुत गलत तरीके से वहां प्रस्तुत किया गया। वैसे तो गुजरात में अब बहुत भक्ति है, लोग अच्छे भक्त हैं, लेकिन जब भक्ति देवी आई तब वहां भक्ति नहीं थी, तो बूढ़ी हो गई। तो इसीलिए मैं वृंदावन आई, और जैसे ही मैं वृंदावन आई तो मेरा जो स्वरूप था वो मुझे पुनः प्राप्त हो गया, मैं फिर से युवावस्था में आ गई, क्योंकि वृंदावन में भक्ति है। लेकिन ये जो दो हैं ये मेरे पुत्र हैं, ये 16 वर्ष की और बूढ़े दोनों हैं, लेटे हुए हैं। बोले ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, और ये अभी तक जवान नहीं हुए, ये तब से बूढ़े हुए ऐसे के ऐसे ही, बहुत प्रयास कर रही हूँ, इसीलिए बड़ा दुख है कि मैं तो ऐसे युवा हो गई और ये दोनों बूढ़े मेरे पुत्र हैं, कैसे चलेगा ये, कहीं देखा है आपने? तो नारद मुनि ने कहा चिंता नहीं करो, बहुत सारा वर्णन है, अभी ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, समय की कमी है। तो नारद मुनि ने कहा चिंता नहीं करो, करेंगे, प्रयास करेंगे। तो नारद मुनि ने सब कुछ उनके कान में कहने का प्रयास किया, सारे शास्त्रों से, इधर से उधर से कुछ कुछ बोल रहे थे, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं, वो बूढ़े के बूढ़े उठे भी नहीं, गिरे पड़े ऐसे। नारद को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे मैंने तो उपनिषदों को कह दिया, वेदों को कह दिया, ये क्यों नहीं उठ रहे हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो फिर आकाशवाणी हुई, भगवान ने नारद से कहा नारद सत्कर्म करो, जाओ ऐसे भक्तों के पास जो तुम्हें सत्कर्म बताएंगे। नारद पूछने लगे ये कौन है भाई, कौन भक्त मिलेंगे, कौन सत्कर्म है? तो नारद मुनि ने सनत कुमार को कहा मैं वही ढूंढ रहा हूं तब से इस पृथ्वी पर कि क्या सत्कर्म है। तो चार कुमारों ने कहा चिंता मत करिए नारद मुनि, हम आपको बताते हैं क्या सत्कर्म है। और उन्होंने कहा कि ये जो आप उपनिषद, ये जो वेद उनको बता रहे, उससे ज्ञान वैराग्य को कुछ होने वाला नहीं है, उनको श्रीमद् भागवतम सुनाइए, क्योंकि श्रीमद् भागवतम ये ज्ञान और वैराग्य को पोषण देती है, ये सच्चा ज्ञान और वैराग्य हृदय में उत्पन्न करती है। और उस समय उन्होंने श्रीमद् भागवत के कई गुणों को कहा, महात्म्य को कहा कि कैसे श्रीमद् भागवत ये सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, कैसे ये अमल पुराण है इत्यादि। और जैसे ही कहा तो भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां प्रकट हो गई, और सबने देखा कि उसके जो दोनों पुत्र थे बूढ़े वो पुनः युवावस्था में आ गए। क्योंकि सनत कुमारों ने कहा कि भक्ति, भक्ति जहां होती है वो मुक्ति साथ में चलती है, भक्ति के, भक्ति करने वालों को मुक्ति की कामना करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही मिल जाती है। तो जो भागवत पढ़ते हैं उनको कोई कामना करने की आवश्यकता नहीं, सब कुछ उन्हें प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भक्ति मिल जाती है। तो इस तरह से ये पद्म पुराण में कहा, ऐसे कई और कथाएं हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य की। गोकर्ण की कथा है वो भी श्रीमद् भागवत के महात्म्य को कहते हैं, शिव जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का महात्म्य कहा गया है। तो ऐसे बहुत सारे महात्म्य हैं, इन सब को कहना तो संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत में भी बहुत अच्छा गुणगान किया गया है, जैसे हम बता रहे थे कि उसमें कहा गया कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाधि सह कलौ नष्टो दृश्यमेश पुराणादो। ये जो कलयुग है इसके अंधकार को नष्ट करने के लिए जो श्रीमद् भागवत ये अर्क या सूर्य के समान है जो उदित हुआ है। कब? जब कृष्ण स्वधाम उपगते, कृष्ण अपने धाम चले गए, धर्म ज्ञानाधि सह, धर्म ज्ञान इत्यादि को लेकर तो फिर ये श्रीमद् भागवत प्रकट हुआ उसी को देने के लिए। तो ऐसे सर्ववेदी इतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, भागवत में कहा गया कि जितने भी वेद इतिहास हैं उन सब का सार है श्रीमद् भागवत। जैसे व्यास देव ने सारे ग्रंथों की रचना की, शास्त्रों की, फिर उनको वेदांत सूत्रों के रूप में बताया, सूत्र यानी एक लाइन में केवल, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, एक वेदांत सूत्र है अथातो। अब आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, अब ब्रह्म जिज्ञासा कीजिए, तो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, तो एक वेदांत सूत्र। तो ऐसे सूत्रों में सारा ज्ञान दे दिया, केवल चार अध्याय हैं वेदांत सूत्र में, और उन चार अध्यायों में सारे शास्त्रों का ज्ञान उन्होंने दे दिया, और वेदांत सूत्रों पर भाष्य लिखा व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत के रूप में, भाष्यम ब्रह्म सूत्राणाम, ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्रों का भाष्य है श्रीमद् भागवतम। एक स्थान पर शिव जी कहते हैं, अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यास वेत्ति व वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, श्रीमद् भागवतम को कौन जानता है? कहते अहम वेत्ति, मैं जानता हूं, शुको वेत्ति, सुखदेव जानते हैं, सुखदेव गोस्वामी, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, व्यास जानते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता। देखिए सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, व्यास देव जिन्होंने लिखा है उसके सार को जानते हैं कि नहीं, शिव जी कहते मुझे पता नहीं, व्यास वेत्ति न वेत्ति वा, भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्ध्या न च टीकया। शिव जी कहते हैं कि केवल भक्ति से भागवतम ग्राह्यम, भागवत को ग्रहण करना है तो भक्ति चाहिए, केवल भक्ति से हम भागवत को जान सकते हैं, न बुद्धया न टीकया, और अपनी बुद्धि से या कोई बहुत बड़ी बड़ी टीका लिखकर भागवत को जान नहीं सकते हैं, भागवत को जानना है तो भक्ति चाहिए, ये शिव जी कहते हैं। और एक स्थान पर एक पुराण में गौतम ऋषि अम्बरीश महाराज को कहते हैं, अम्बरीश प्रोक्तम नित्यम भागवतम श्रृणु पठस्व स्वमुखानापि यदिच्छसि भवक्षयम्, यदिच्छसि भवक्षयम्, अगर हे अम्बरीश तुम्हारी इच्छा है भवक्षयम्, ये जो भवरोग है इसका नाश करने की, भवक्षयम् भवसागर पार करने की, यदिच्छसि अगर इच्छा है अम्बरीश तो क्या करो, शुक प्रोक्तम नित्यम भागवतम सुनो, नित्यम भागवत को सुनो, वो भागवत जो शुक प्रोक्तम सुखदेव गोस्वामी ने कही है, यदिच्छसि भवक्षयम, अगर भवसागर को पार करना चाहिए, मुक्त होना चाहते हो तो रोज श्रीमद् भागवतम को सुनो। और जैसे तारक स्कंद पुराण में लिखा है कि रोज एक श्लोक केवल सुनने से बोलने से व्यक्ति निश्चित मुक्त होता है, इसीलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया कि हर रोज श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पर चर्चा की जाती है। तो जहां भी भागवत पढ़ी जाती है, भागवत सुनी जाती है, केवल भागवत रखी जाती है घर में, ऐसा कहा गया है कि जिस स्थान पर जिस घर में भागवत का श्लोक एक भी श्लोक रोज बोला जाए या रोज कहा जाए, रोज उच्चारण किया जाए, उस स्थान में कभी कोई कष्ट नहीं होगा, वहां रहने वाले जीव निश्चित मुक्ति को प्राप्त होंगे, फिर वो चाहे घर हो या मंदिर हो। तो इसीलिए भागवत का श्रवण हमें नित्य करना चाहिए। भागवत में कहा गया है नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेश्व भद्रेशु, जितने भी अभद्र हैं हृदय में वो नष्ट हो जाएंगे अगर हम नित्यम भागवत सेवया, रोज हम भागवत पढ़ेंगे और सुनेंगे तो नित्य जितने भी हृदय में अभद्र हैं वो दूर हो जाएंगे। विदुनोति सुहृत्सताम, धो डालेगी भागवतम जितने भी हमारे हृदय के अनर्थ हैं उनको। तो ये संक्षेप में भागवत के महात्म्य को कहा, बहुत सारा और कुछ कहने के लिए है, आज संक्षेप में इसका वर्णन किया। और जैसे हमने सनातन गोस्वामी के लिखे हुए भागवत महात्म्य का वर्णन किया, तो सभी आचार्यों से, पूर्ववर्ती आचार्यों से, श्रील प्रभुपाद से और वर्तमान आचार्य वृंदों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें शक्ति प्रदान करें ताकि कल से श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद पर चर्चा प्रारंभ कर सके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। कोई प्रश्न?